बाबा जी की प्यारी प्यारी सास संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बाबा जी की दया से मौज बहार में होंगे, सुख संतोष में जीवन बिता रहे होंगे। सास संगत जी, अक्सर हम बात करते हैं कि मालिक हमें दुख क्यों देता है, मैं तो इतना सिमरन करता हूँ, इतना भला चाहता हूँ सबका, इतना भला चाहती हूँ सबका, फिर भी परमात्मा मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसी विषय को लेकर आज मैं हाजिर हूँ कि इतना दुख इंसान को, हर इंसान को क्यों मिलता है और वो परमात्मा से शिकायत करता है। तो मालिक ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आज हाजिर हूँ। तो चलिए आइए साखी को शुरू करते हैं। जब हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, तो परमात्मा ने हमें इस दुख के देश काल की नगरी में क्यों भेजा है? सत्संग जी, क्यों भेजा है, हम क्यों यहाँ दुख भुगतने के लिए आए हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। हमें यहाँ परमात्मा ने नहीं भेजा, बल्कि हम तो अपने परम पिता के उस देश में रहते हुए वहाँ के अथाह सुखों की नगरी में परमात्मा के अंश के रूप में रहा करते थे। लेकिन काल ने घोर तप करके तीनों लोकों को मांग कर फिर परमात्मा से हम आत्माओं को मांगा, तो पहले तो परमात्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुझे अपनी रूहें नहीं दे सकता, ये मेरी अंश है, ये मेरी संतानें हैं, और एक पिता अपनी संतानों को अपने से दूर कैसे रख सकता है। लेकिन काल की बार बार घोर तपस्या और बहुत विनती करने पर परमात्मा ने कहा कि मैं तो किसी भी रूह को तुझे नहीं दे सकता, लेकिन अपनी मर्जी से जो रूह तेरे साथ जाना चाहे वो जा सकती है। फिर परमात्मा ने सभी रूहों से पूछा कि काल के साथ उसके देश में जो रूह जाना चाहती है वो जा सकती है। पहले तो सभी रूहें चुपचाप खड़ी थी, फिर उनमें से किसी एक रूह को लगा कि काल ने इतना घोर तप कर परमात्मा को खुश किया है और तीनों लोकों का मालिक भी बन बैठा है, जरूर यहाँ सुख और आनंद यहाँ से ज्यादा होगा। यही सोचकर और हिम्मत करके पहले एक रूह ने काल के साथ जाने की हामी भरी, फिर देखते देखते यही विचार कई रूहों के मन में आता गया और अनगिनत रूहें काल के साथ जाने को तैयार हो गई। तब परमात्मा को बड़ा अफसोस हुआ और परमात्मा ने अपनी भी किसी रूह की मर्जी और खुशी के खिलाफ नहीं गए। सत्संग जी, परमात्मा किसी भी रूह के खिलाफ नहीं गए, जिन्होंने हाँ भर दी वो परमात्मा ने उनको काल के साथ जाने की इजाजत दे दी। सत्संग जी, लेकिन मालिक को बहुत दुख हुआ कि मेरी रूहें काल के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। तो सत्संग जी, जबकि परमात्मा काल की असलियत को जानते हुए भी इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन रूहों को काल के साथ जाने से रोकता हूँ तो इनके मन में यह बात हमेशा बैठी ही रहेगी कि यहाँ से कहीं ज्यादा सुख काल की नगरी में ही होंगे। इसलिए परमात्मा ने हम रूहों की खुशी और चाहत के आगे अफसोस भरी चुप्पी साध ली। लेकिन फिर भी परमात्मा ने सभी रूहों को फरमाइश देते हुए, समझाते हुए कहा कि हे मेरी रूहों, अगर काल के देश में जाना ही तुम सबकी अपनी मर्जी है, खुशी है, तो जाओ। लेकिन जब तुम काल के देश की सच्चाई और उसकी रचना से त्रस्त होकर वापस अपने पिता के घर आना चाहो तो मैं तुम्हें मंत्र और युक्ति बताता हूँ जिसके जरिए तुम वापस मेरे पास आ सकते हो। इतने दयालु है परमात्मा सत्संग जी। इस प्रकार सभी रूह अंशों ने अपने परम पिता परमात्मा से वो मंत्र लेकर काल के देश में जाने के लिए असली सुख के उस देश से विदाई ले ली। और काल ने हम रूहों को किसी को स्वर्ग, किसी को पृथ्वी, तो किसी को पाताल लोक में भेजकर तीनों लोकों में सृष्टि की रचना कर दी। फिर काल ने सोचा कि अगर इन रूहों को जरा सा भी दुख होगा तो ये सभी परमात्मा के मंत्र को जप कर वापिस अपने देश में चलती जाएंगी, ऐसे में तो मेरी रचना फिर से खाली हो जाएगी। और फिर काल ने इन रूहों को अपने परम पिता परमात्मा के बख्शे उस मंत्र को भुलाने के लिए अपने नकली मंत्र, जप, तप, पूजा पाठ, कर्म कांड, वेद पुराण आदि का एक ऐसा विशाल जाल फैलाया कि आखिर रूहें परम पिता के उस मंत्र को भूलकर इन सब कर्म कांडों में उलझ कर रह गई। फिर काल ने अपने अवतार राम कृष्ण शंकर जैसे करोड़ों देवी देवताओं को अलग अलग युग में भेजा ताकि सभी रूहें इन्हें ही असली मुकाम समझकर इनकी भक्ति में उलझे रहें। और हुआ भी ऐसा ही, प्राय सभी रूहें इन्हें ही असली ईश्वर समझकर पूजा करने लगी हैं, पूजा कर रही हैं, आज भी पूजा कर रही हैं। और जब सभी रूहों को ये पता चल गया कि काल के देश में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ रूहों ने काल की इस नगरी से निकलने के लिए और काल के द्वारा दिए गए दुखों को बयां कर और मुक्ति की आस रख करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर के आराधना में लगे रहे और ये भूल बैठे कि इनकी आराधना ही काल का जाल है। मतलब काल से काल की शिकायत करके ही भक्ति करने में लगे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सत्संग जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और ये सारा माजरा देखकर उस परमात्मा को हम पर तरस आया और देखा कि मेरी रूहें मेरे पास वापस आने के उस मंत्र उस युक्ति को भूल बैठी है और नकली और बाहरी भक्ति अति दुख और कष्ट भोग रही है। फिर उस परमपिता परमात्मा ने हम रूहों पर अति दया मेहर करके अपने अनुयायी गुरु को, खुद परमात्मा का रूप है उस गुरु को, इस काल की नगरी में हम जीवों को वापस लाने के लिए भेजा। और फिर वो परमात्मा स्वरूप गुरु तब से लेकर आज तक हम जीवों को काल के इस जाल और इसकी असलियत बताकर अपने साथ ले जाने के लिए वो परमात्मा का मंत्र और युक्ति देते आ रहे हैं, जिसे नाम भी कहते हैं। सात संगत जी, गुरु हम रूहों को आज भी समझाते आ रहे हैं कि भाई तुम सब का पिता वो परमात्मा इंतजार कर रहा है। तुम सब काल के चक्रव्यूह में बुरी तरह से कैद हो चुके हो। फिर सतगुरु हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि जिस चकाचौंध और माया में तुम उलझे हुए हो, ये काल का ही जाल है। तुम्हें यहाँ फंसाए रखने का उसका एक षड्यंत्र है। तो सात संगत जी, इस काल के जाल से सिर्फ और सिर्फ गुरु का बताया हुआ, परमात्मा का बताया हुआ वो मंत्र वो सिमरन ही पार लगा सकता है, काल के जाल से बाहर निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ सिमरन, भजन, बंदगी, सतगुरु की बंदगी। तो सत्संग जी, यदि काल के जाल से बाहर निकलना है हमेशा के लिए, तो भक्ति सतगुरु की करते रहिए, सिमरन करते रहिए, तप करते रहिए, लगातार सिमरन को समय दीजिए, तभी हम इस काल के जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो सत्संग जी, ये थी आज की मुझे बहुत बहुत पसंद आने वाली साखी। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा जरूर। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई शिक्षा प्रद साखी लेकर फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधा स्वामी जी।